नीति वचन अध्याय 12। नीति वचन का अध्याय 12 भी धर्मी और अधर्मियों की तुलना करते हुए ही चल रहा है। नीति वचन अध्याय 12 पद 1। जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता है वो ज्ञान में प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीका है। बहुत से नीति वचन है जो बुद्धिमान मनुष्य को शिक्षा देते हैं। बुद्धिमान मनुष्य शिक्षा देने वाले से प्यार करता है। यदि आप निर्बुद्ध को शिक्षा देंगे तो वो आपसे घृणा करेगा। एक मूर्ख मनुष्य शिक्षा से बैर रखता है, वो शिक्षा का मूल्य नहीं जानता। नीति वचन अध्याय 12 पद 2 से लेकर 4 तक। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वालों को वो दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करती वो मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। ये समझने के लिए कि भली स्त्री कैसी होती है, हमें नीति वचन अध्याय 31 देखना होगा। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है। अच्छी स्त्री एक बड़ी आशीष है। हम लोग अपनी इन अच्छी पत्नियों के लिए परमेश्वर के आभारी हैं। ऐसी पत्नी अपने पति का मुकुट होती है। नीति वचन अध्याय 12 पद 5 से लेकर 7 तक। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की है। दुष्टों की बातचीत हत्या करने के लिए, घात लगाने के विषय में होती है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर स्थिर रहता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 7 भी पद 3 की तरह है, परंतु कहने के तरीके में कुछ फर्क है। नीति वचन अध्याय 12 पद 8 और 9। मनुष्य की बुद्धि के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है, परंतु कुटिल तुच्छ जाना जाता है। जो रोटी की आस लगाए रहता है और बड़ाई मारता है, उससे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है। ये बहुत अच्छा नीति वचन है। ऐसे लोग भी हैं जो अपनी बड़ाई मारते और बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन उससे दास रखने वाला तुच्छ मनुष्य भी उत्तम है उस मनुष्य से जो स्वयं की बड़ाई मारता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 10। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है। पशुओं पर दया करना धर्मी का चिन्ह है। वो मनुष्य जो पशुओं पर क्रूर है, वो परमेश्वर की रचना पर क्रूर है। धर्मी मनुष्य पशु के भी प्राण की सुधि रखता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 10 और 11। परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। जो अपनी भूमि को जोतता वो पेट भर खाता है, परंतु जो निकम्मों की संगति करता वो निर्बुद्धि ठहरता है। यदि आप बैठे बैठे नगर में आने जाने वाले लोगों को देखते रहें और अपने खेत में काम करने को नहीं जाते हैं, तो आप में समझदारी की कमी है। लेकिन यदि आप अपनी भूमि को जोतते हैं तो आप पेट भर खाना खाएंगे। नीति वचन अध्याय 12 पद 12 से लेकर 15 तक। दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल की अभिलाषा करते हैं, परंतु धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। सज्जन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से तृप्त होता है, और जैसी जिसकी करनी वैसी उसकी भरनी होती है। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। आपको ये वचन याद होगा, मूर्ख को शिक्षा दोगे तो वो तुमसे घृणा करेगा। नीति वचन अध्याय 12 पद 15 और 16। परंतु जो सम्मति मानता वो बुद्धिमान है, मूर्ख की रिस उसी दिन प्रकट हो जाती है। मूर्ख लोग कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं, वे मुंह पर अपनी नाराजगी दिखाते हैं। आप मूर्ख का क्रोध जानते हैं, वो उसे नहीं छुपा सकता। नीति वचन अध्याय 12 पद 16 में आगे लिखा है, परंतु चतुर अपमान को छिपा रखता है। चतुर मनुष्य छोड़ देता है, परंतु मूर्ख का क्रोध प्रकट हो जाता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 17 और 18। जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठी साक्षी देता वो छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चुभता है। लोग अपने शब्दों से आपको परस्त कर सकते हैं, वे आपको छलनी कर सकते हैं। शब्द विनाशकारी हो सकता है। परमेश्वर सहायता करे कि हम अपनी जीभ का प्रयोग छुरी की तरह ना करें, परंतु हमारे शब्द मरहम का काम करें कि दूसरों को तसल्ली देने और उन्नति के लिए हो। यदि आप अपनी जीभ को काटने वाले औजार की तरह प्रयोग करेंगे तो प्रत्यक्ष है कि लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और जो आप उन्हें देंगे वही आपके पास लौट कर आएगा। यदि आप दुखदायी शब्द कहते हैं तो लोग भी आपसे दुखदायी शब्द कहेंगे, लेकिन यदि आप दूसरों के बारे में अच्छा कहेंगे तो वे भी आपके बारे में अच्छा कहेंगे। किसी मनुष्य की प्रशंसा करना उतना ही आसान है जितना कि उसे नीचा दिखाना। किसी की प्रशंसा करने के हमारे पास उतने ही कारण होते हैं जितने किसी की बुराई करने के। एक और नीति वचन है, हमारी उत्तमता में अनेक बुराइयां हैं और हमारी बुराइयों में इतनी अच्छाइयां हैं कि बुराई करना उचित हो ही नहीं सकता। मेरे शब्द किसी को उठा सकते हैं तो मेरे शब्द किसी को गिरा भी सकते हैं। ऐसा लगता है कि संसार में दो तरह के लोग हैं, एक वे जो उठाते हैं और दूसरे वे लोग जो गिराते हैं। जब आप मित्र की तलाश करते हैं तब आप किस तरह के मित्र ढूंढते हैं? आपका झुकाव ऐसे मित्रों की तरह होता है जो बराबर आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप ऐसे मित्र की कामना नहीं करते जो आपको हतोत्साह निरुत्साह करे। आप ऐसे मनुष्य को प्लेग बीमार की तरह अस्वीकार करते हैं, लेकिन जो मनुष्य दयालु सभ्य प्रसन्न करने वाला है आप उनके साथ खुशी से रहते हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनका बिना सोच विचार के बोलना तलवार की नाई चुभता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 18 में आगे लिखा है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति निर्माता होता है और वो दूसरों को लाभ पहुंचाता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 19, सच्चाई सदा बनी रहेगी परंतु झूठ पल ही भर का होता है। सच्चाई सदा के लिए है परंतु झूठ पल भर कार्य करता है, फिर झूठ बोलने वाला पकड़ा जाता है। नीति वचन अध्याय 12 पद 20 और 21, बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है। अब लेखक अंतिम न्याय की बात करता है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। बहुत सी चीजें हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है, और आप अपना बाइबल शब्द कोश निकालकर घृणा शब्द की खोज करें और मालूम करे कितनी बातें हैं जिनसे प्रभु घृणा करता है। नीति वचन 6:17। घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। नीति वचन 11:1। छल का तराजू, ये बातें प्रभु के सामने घृणित है। मैं निश्चय ही ऐसा कुछ करना नहीं चाहूंगा जिससे परमेश्वर घृणा करता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा जीवन उसके सम्मुख घृणित हो। आप बाइबल शब्दकोश खोलकर देखें कि कितनी बातें परमेश्वर के लिए घृणित है, जिससे कि आप उनसे बच सके। झूठों से यहोवा को घृणा आती है। नीतिवचन 12:22-27। परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वो प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगारी में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वो आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी आहेर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। बाइबल मनोरंजन के लिए शिकार खेलना मना करती है। खाने के लिए हो तो शिकार करना ठीक है, लेकिन आलसी मनुष्य को शिकार खाने को नहीं मिलता है। नीतिवचन 12:28। धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु की पता भी नहीं। यीशु ने कहा, यूहन्ना 11:26, जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। यहां हमें बताया गया है धार्मिकता में जीवन है और उसमें मृत्यु नहीं है। अब वे जो जीवित है और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जिन्होंने धार्मिकता का जीवन जिया है, उनका क्या होता है, इसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे? यीशु ने कहा है, जो कोई जीवता है और मुझ में विश्वास रखता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। मुझे इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। यदि वे मरे नहीं तो उनका क्या होगा? पौलुस 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5:1-8 में कहता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थाई है। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कहराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा डाडस बांधते रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम डाडस बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। वहां मृत्यु नहीं है तो वहां क्या है? वहां पर रूपांतरण है, अर्थात शरीर का बदल जाना। मेरी आत्मा इस डेरे से निकलकर, जैसे यीशु ने कहा, स्वर्गीय भवन में चली जाएगी। यूहन्ना 14:2-3। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए एक दिन मेरी आत्मा इस डेरे सरी के घर से मुक्त हो जाएगी और एक नए भवन में जाएगी जो परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। ये परमेश्वर का भवन जो मनुष्यों के हाथ से नहीं बना हुआ परंतु स्वर्ग में चिरस्थाई है। परमेश्वर ने इस शरीर को ऐसा बनाया जो पृथ्वी ग्रह पर रहे और पृथ्वी ग्रह के वातावरण में रहे। इसलिए परमेश्वर ने मेरे लिए एक और शरीर बनाया जो स्वर्गीय वातावरण के अनुरूप हो। ये शरीर अनंत जीवन के लिए नहीं है। ये शरीर तो घटता जाता है, ये डेरा पुराना होता जाता है, निर्बल होता जाता है, जिसमें छेद होते जाते हैं। इसमें तो हम कहराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। कितना विरोधाभास है, हाथ का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थाई। नया शरीर स्थाई प्रतिरूप है और जैसे मैंने पृथ्वी का रूप धारण किया है और सांसारिक हूं, वैसे ही स्वर्गीय रूप धारण करूंगा। मेरा नया प्रतिरूप, मैं मुश्किल से नई देह की प्रतीक्षा कर पा रहा हूं। मैं उन सब चीजों में रुचि रखता हूं जो इनसे उत्तम है और मुझे मिलनी चाहिए। परंतु ये शरीर निम्न कोटि का नहीं है। ये शरीर एक अद्भुत उपकरण है। चमत्कारिक सामर्थ्य परमेश्वर ने मनुष्य के शरीर में रखा है, तो भी परमेश्वर ने मेरे लिए नया प्रतिरूप रखा है जो इससे कहीं उत्तम है। मेरा आज का शरीर एक ही स्थान के लिए सीमित है, पृथ्वी और उसके चारों ओर के वातावरण के लिए। नया प्रतिरूप हर स्थान के लिए होगा। यदि मैं चाहूं कि सूर्य पर कुछ देर बैठूं, तो वास्तव में परमेश्वर ऐसा प्रतिरूप बना सकता है जो सूर्य पर बैठ सके। इसमें परमेश्वर को कोई कठिनाई नहीं होगी कि ऐसा प्रतिरूप तैयार किया जाए जो सूर्य पर रह सके, जैसे उसने पृथ्वी पर रहने के लिए बनाया गया था। कुछ भी हो, परमेश्वर एक विशिष्ट रचनाकार है। परमेश्वर का नया भवन स्वर्ग में अनंत काल के लिए है। वहां मृत्यु नहीं है। मसीहियों द्वारा ये कहना, ओ पिछले सप्ताह वो मर गया, ठीक नहीं है। परंतु हमें कहना ये चाहिए, वो पिछले सप्ताह चला गया। क्या आपने सुना, वो इस फटे पुराने डेरे में से चला गया। वो अब एक सुंदर भवन में रह रहा है। परमेश्वर का भवन मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ नहीं परंतु चिरस्थाई है।